आदरणीय आचार्य जी, माननीय मातृशक्ति, सज्जनों, भाई बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा सादर नमन। मैं आज शेयर करूंगी कि पतंजलि योग मेडिटेशन ने कैसे मेरी लाइफ को शेप किया है। मैं बहुत ही स्ट्रांग आर्य समाज फैमिली से हूं। नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। तो मेरा नाम शोभा चड्ढा है। मैं ऑस्टिन से आई हूं और जैसा आचार्य जी ऑलरेडी बता चुके हैं मेरे बारे में, तो मैं वहां ज्यादा नहीं जाऊंगी। और जो मुझे मेरे जीवन में, मैंने अपने जीवन में जो चेंज देखा है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूं। मैं हमेशा कंपेयर करती हूं कि मेरी लाइफ मेडिटेशन से पहले कैसी थी। मैं बहुत ही एक स्ट्रांग आर्य समाज फैमिली में रही हूं। मेरे फादर इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे और आप समझते हैं कि किस तरीके का मिलिट्री स्टाइल था कि सारे हवन के जितने भी सेशंस होते थे, जलूस होते थे, वो सारे अटेंड करने होते थे और कंपलसरी डेली हवन होता था और आज भी होता है। लेकिन जैसे जब इन्फ्लुएंशियल लोग आते थे घर में, जो भी आर्य समाज से थे, तो उससे एक नॉलेज तो आई जो मंत्रों की थी, जो एक संस्कार थे वो तो मैंने जरूर देखा और वो सभी में आए, लेकिन उसके साथ एक जो ईगो है वो भी मैंने महसूस किया कि टाइम के साथ आती गई। ऐसा लगा कि जैसे मैं और सबसे बेटर हूं। और जब इवेंचुअली वो सब चीजें अंदर आने लगती हैं तो आपका अपने आप से कहीं ना कहीं टच हट जाता है। जब आप सरफेस लेवल पर जीने लगते हैं, जब आपको लगता है कि आपको ये आता है, आपको मंत्र आते हैं, द मोमेंट यू फील लाइक यू नो एवरीथिंग, आप किल कर देते हैं पॉसिबिलिटी को आगे जानने की। और नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो मेरे जीवन में आए, उससे मेरे अंदर ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड तो आया। फिर शादी हुई, एक नया चैप्टर शुरू हुआ। और शादी ऐसे परिवार में हुई जो नॉन आर्य समाजी फैमिली थी। हस्बैंड इंजीनियर थे, हर चीज को लॉजिकल तरीके से देखना, प्रैक्टिकल तरीके से देखना था। लेकिन जब आदमी में पैशन होता है और उसको थोड़ा क्लैरिटी होती है कि उसे जीवन में क्या चाहिए, तब उसको सपोर्ट मिलती है। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूं कि मेरे में नादानी ज्यादा थी और मैच्योरिटी कम थी। संदीप जी जो यहां मौजूद हैं, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत काम, बहुत पेशेंट इंसान है। इन्होंने पहले तो मुझे देखा और मेरे से बोले कि तुम टन टन की बातें करती हो, लेकिन प्रैक्टिकलिटी कहां पर है कि हां ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए, फादर ने ये किया है, और जो भी आर्य समाज के सारे रूल रेगुलेशन, सारी चीजें, बड़े बड़े मंत्रों के मीनिंग तो पता है, जीवन में वो कहां शो हो रहा है, मैं वो देखना चाहता हूं। उन्होंने मुझे मेरे अंदर एक, जैसे कहते हैं, अवेयरनेस की। तो जैसे आचार्य जी ने कहा कि हर चीज का एक मंतव्य होता है, एक गोल होता है कि किस तरीके से गुरु विरजानंद जी के पास जब दयानंद जी आए और तब अष्टाध्याय उन्होंने पढ़ाया, तो उसी चीज के लिए मैं ऐसा कहती हूं कि शायद मेरी जो गोल था, मेरी मंजिल थी, कहीं और थी और इसलिए संदीप जी मेरी जिंदगी में आए। इन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि जो तुम कर रही हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, why यू आर डूइंग, जस्ट क्वेश्चन इट। और उस चीज से मैं बहुत अवेयर हुई और प्रेजेंट हुई। हमेशा मैं जब आज की डेट में भी हवन कराने जाती हूं, मेरे से हमेशा कहते हैं तुम्हारी इंटेंशन क्या है। अपने आप को हमेशा पीछे रखना, समाज को हमेशा आगे रखना। और ये चीजें अवेयरनेस के साथ मैंने अपने जीवन में उतारी हैं, तो वो उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। अभी मैं अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में गई थी, लगभग एक महीना मैं रही क्योंकि पेरेंट्स ज्यादा एज के हैं इंडिया में। मेरे फादर अराउंड 90 हैं, मदर 80s में हैं, दोनों बच्चों को उन्होंने देखा, तो इस तरीके की सपोर्ट, और उन्होंने कहा कि नहीं जाना चाहिए वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो वहां बहुत ही मैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहती थी और जो मैं लेना चाहती थी, दोनों ही मुझे ऐसा लगता है वो पर्पस मेरा सॉल्व हुआ है अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में जाके। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। मेरी जिंदगी में बहुत लोगों का रोल रहा है। पंडित जी मेरी जिंदगी में आए जो मेरे गुरु थे, और जिस तरीके से वो सेल्फलेस होकर उन्होंने अपनी जिंदगी जी, वो चीज मैंने अपने अंदर लोगों की हेल्प करके, जिस तरीके से वो हेल्प करते थे, वही मैंने अपने जीवन में अपना कर उस चीज को, जैसे हवन आदमी करता है, यज्ञ क्या है कि जो आप जिस तरीके से जो अपना कर्म करते हैं उसको पैशनेटली करते हैं, तो वो चीज मैंने, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है और वही मैं करती हूं। नेक्स्ट स्लाइड। आई डिड द लैंडमार्क फोरम, दैट इज अ सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कि जिसमें आदमी बहुत अवेयर, बहुत ऑथेंटिक कि जो मैं सोचती हूं क्या वो ही मैं कह रही हूं, जो मैं अपने जीवन में अपना रही हूं क्या वो मैं दूसरे के जीवन में डिफरेंस लेकर आ सकती हूं। तो वो मेरी एक मैंने इस चीज से सीखा। और पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मैं अभी बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन हर इवेंट जो मैंने यहां पर सारे टाइटल्स लिखे हैं, दोज वर लाइक यू नो लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी, कि इन चीजों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और कैसे फिर इवेंचुअली मेडिटेशन को इनकलकेट करके और कैसे मैंने अपने जीवन में एसिमुलेट करके किस तरीके से मेरा जीवन अब है, वो मैं करना चाहूंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कर दीजिए। तो अबाउट अ ईयर एंड हाफ एगो आचार्य जी से हम हवन पर मिले थे, और आचार्य जी ने ब्रीफली बताया कि वो पतंजलि योग मेडिटेशन सिखाते हैं, एंड वी इमीडिएटली गॉट इंटरेस्टेड क्योंकि इतना उनमें जेन्युइननेस थी, उतना पैशन दिखाई दिया जो उन्होंने शेयर किया पतंजलि योग मेडिटेशन के लिए। हमने इमीडिएटली अपने घर पर ऑर्गेनाइज किया और 6 वीक्स के लिए वंस अ वीक वो आते थे। 10 से 15 लोग थे क्लास में, जिसमें कि बच्चे थे तो एडल्ट्स एंड सब इंक्लूडिंग 15 थे। तो अमेजिंग बात यह थी कि आचार्य जी ह्यूस्टन से ऑस्टिन आते थे और उन्होंने हमेशा ये कहा कि मुझे ऐसा ट्रीट करना कि मैं लोकल हूं और ऐसा मत सोचना मैं ह्यूस्टन से आ रहा हूं। रश आवर में आते थे, कोई भी एक साधारण इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो सकता है क्योंकि रश आवर है, लेकिन मुझे हमेशा आचार्य जी इतने काम दिखाई दिए, इतना इंस्पायरिंग था उनका जो बीइंग, वो लोगों के ऊपर इतना डीपली इम्पैक्ट हुआ कि इवन जो सबसे छोटे एज का भी बच्चा था, एक 6 ईयर्स का भी बच्चा था, वो सारे बच्चे इतने एंगेज थे पूरे मेडिटेशन में। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स को बच्चों को कहना पड़ता है कि मेडिटेशन के लिए बैठो और प्रैक्टिस करो, बच्चे अपने आप ही मेडिटेशन में इतना इन्वॉल्व थे कि नेक्स्ट डे वो शेयर कर रहे थे कि हाउ डिड दे फील। और उन्होंने हमें इंस्पायर किया उनके शांत रहने से, उनके बीइंग में इतनी अवेयरनेस थी, उसकी वजह से हमें इंस्पिरेशन मिली है दोनों बच्चों से। एंड आप नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो आचार्य जी की जो एनर्जी थी, ऑब्वियसली बहुत अनफॉरगेटेबल बीइंग था उनका, और एवरीबडी गॉट अ वैल्यू फ्रॉम दोज क्लासेस। मैं ऐसा कहती हूं कि परमानेंट शिफ्ट आया हमारी साइकी में भी और बच्चों की साइकी में भी। हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा हमारा जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो, बहुत ज्यादा वो जो है अवेयर रहे, जिस तरीके से जब हम उसको कुछ बात कह रहे हैं तो वो रिसीव कर सके इन्फॉर्मेशन को उसी वेवलेंथ पर। और ये चीज मैंने अपने दोनों बच्चों में देखी है मेडिटेशन के बाद, और उस चीज के लिए मैं आचार्य जी की बहुत आभारी हूं। मैं अभी शेयर करती हूं कि मैंने अपने बच्चों में क्या डिफरेंस देखा है. नेक्स्ट स्लाइड. तो हम मेडिटेशन कर रहे थे और आफ्टर फ्यू वीक्स वी स्टार्टेड सीइंग सम लाइक नोटिसेबल चेंजेस. आर्यन इज हियर, अदिति इज हियर. आर्यन इज 10 इयर्स ओल्ड एंड जो उसका पहले का बीइंग था वो बहुत ऐसा था कि रेस्टलेस था और उसको जैसे कुछ भी कहो तो यदि उसके मन की बात नहीं हो रही है तो जल्दी से इरिटेट हो जाता था. बहुत हाइपर एनर्जी है इसके अंदर, मैं कहूंगी कि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है. तो बहुत स्मार्ट है लेकिन इतनी एनर्जी हमारे पास नहीं है जितनी एनर्जी इसके पास थी. और उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए मैं कहती हूं कि मेडिटेशन ने अमेजिंग काम किया है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां शेयर करना चाहती हूं कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूं. पूरे दिन के बाद आने के बाद आप घर का भी यहां पर काम करना पड़ता है तो मैं रूटीन में अपना बहुत व्यस्त थी. आर्यन को ऐसा महसूस हुआ कि उसको टाइम नहीं मिल रहा है. तो एक दिन वो किचन में बैठा हुआ था और मेरे से कहने लगा कि मम्मी आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं. मैंने कहा हाँ बेटा. और ये बैठ के कहने लगा मम्मी एक बच्चा था वो बहुत सैड रहने लगा क्योंकि उसकी मम्मी कभी प्रेजेंट नहीं रहती थी. वो हमेशा हूं करती थी जब भी उससे वो बच्चा क्वेश्चन पूछता था. और एक दिन वो बच्चा सैड हुआ और वो माउंटेन के ऊपर चला गया और वहां से उसने फ्लाई किया. मैंने कहा क्या किया? यह बोला वहां से वो फ्लाई करके दूसरे वर्ल्ड में चला गया. वहां उसको एक नई मां मिली और वो बहुत खुश रहती थी क्योंकि वो बहुत प्रेजेंट थी. वो उसका बच्चा उससे बात करता था तो वो उससे कॉन्वर्सेशन में एंगेज होती थी. वो बच्चा खुश रहने लगा और मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे वो किसी और की स्टोरी सुना रहा था. मैंने कहा हूं मैंने ऐसे ही किया. ये पीछे से आया, इसने मुझे हक किया. बोला मम्मी क्या मेरी वो मम्मी बनोगे? मैं डिशेस क्लीन कर रही थी, मैं एकदम से घुटनों के बल बैठ गई. मैंने इसको हक किया. मैंने कहा सॉरी बेटा. क्यों नहीं? कई बार बच्चे आपको सिखाते हैं कि कैसे प्रेजेंट रहना है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चों के साथ या अपने डे टू डे लाइफ में इतना ऑटो पायलट लाइफ जीते हैं क्योंकि हम प्रोडक्टिव नहीं हैं. हम हमेशा या तो पास्ट में हैं या हम फ्यूचर में हैं. वो अवेयरनेस है ही नहीं हमारे बीइंग में. वो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ. प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करिए. अब बहुत ये एकदम काम है, ये अपना शेयर करेगा क्या इसको फील हुआ है. मेरी बेटी 15 इयर्स ओल्ड है, हाई स्कूल में है. यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल शेयर करना चाहती हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है. कई बार अमेजिंगली मैं कभी कभी हैरान होती हूं कि कितना सीखने को है इन बच्चों से, हर किसी से. मैं हॉस्पिटल से आई थी, फ्रीजिंग टेम्परेचर था. मैंने अपने हस्बैंड को फोन करके बोला था कि सारे प्लीज प्लांट्स अंदर रख देना, फ्रीज हो जाएंगे. और इनकी कहीं मीटिंग थी. जब मैं घर आई तो ये नहीं थे और अदिति घर में थी. मैंने कहा अरे अभी मुझे सारे प्लांट्स अंदर रखने हैं और इनसे मैंने एक काम कहा था और इन्होंने वो नहीं किया. और मैं थोड़ा सा अपसेट होकर सारे प्लांट्स उठाकर मैंने अंदर रखे. बहुत भारी भारी प्लांट्स थे. और थोड़ी देर में ये आए, गैराज का दरवाजा ओपन हुआ और मैं पूरी चार्ज्ड अप थी इनको कहने के लिए कि कैसे ये गलत है और मैं कहां कहां ठीक हूं. क्योंकि यही इंसान, जब आदमी में कम अवेयरनेस होती है, आदमी हमेशा इस मोड में रहता है कि क्या ठीक है क्या गलत है और मैं कैसे ठीक हूं और दूसरा इंसान कैसे गलत है. तो जैसे ही मैं इनको कहने के लिए आई तो अदिति एकदम इनके पीछे आकर खड़ी हो गई और उसने ऐसे मुझे इशारा किया मम्मी और मैं इसकी तरफ देखने लगी। इसने कहा मम्मी मुंह बंद रखना। मैं कुछ नहीं बोली उस सेकेंड। ये अंदर चले गए अपने कपड़े बदलने के लिए, मेरे पास आई, बोली मम्मी आपको सिर्फ यही दिखाई दिया, पापा ने पूरा दिन, आप 14 आवर्स के बाद घर में घुसे हो हॉस्पिटल से, उन्होंने हमारे खाने का ध्यान रखा, हमारी एक्टिविटीज का ध्यान रखा और बस काम की, आपको वो दिखाई नहीं दिया, आपको सिर्फ ये दिखाई दिया कि उन्होंने प्लांट्स नहीं रखे। क्या आप उनको थैंक यू कह सकते हो? क्या आप उनको हक कर सकते हो? ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं बच्चों से, जब बच्चे अवेयर होते हैं, जब बच्चे प्रेजेंट होते हैं। और ये चीजें मैंने अपने बच्चों से सीखी हैं। आप प्लीज, और उसका ऑब्वियसली जो अपेरेंटली मुझे लगता है कि उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज हुआ है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि उसमें इतना लीडिंग क्वालिटीज नहीं है, और नाउ शी पार्टिसिपेट्स इन ऑल द एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। आप नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो मेरे में क्या चेंज हुआ है? मैं ऑलवेज ही ऐसा लगता था कि जैसे आई एम इन हरी, कि एकदम जैसे हरिडनेस होती है और टास्क ओरिएंटेड होता है इंसान कि मुझे ये काम फिनिश करना है। सपोज आप मुझे कहेंगे कि आपको 5 लोगों से मिलना है, तो मेरे दिमाग में बस ये काउंटिंग चलती थी कि ये 1 से मिली हूं, 2nd से, 3rd से। लेकिन ये कभी नहीं होता था कि मैं उस मोमेंट में प्रेजेंट होकर उस इंसान की ऑसमनेस को फील करूं। इस वक्त मैं इतना प्रेजेंट हूं, आप सब इतना इंटेंटली मुझे लिसन कर रहे हो, मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस मोमेंट में। आपका इतना प्यार मैं महसूस कर पा रही हूं इस एवरी सिंगल मोमेंट, कि मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि थैंक यू, आप मुझे इतने अच्छे से लिसन कर रहे हो। और मैं आप सब में जैसे हो उस परम परमात्मा को महसूस कर पा रही हूं। तो वो चीज कभी थी नहीं मेरे अंदर। हमेशा ऐसा था कि जल्दी से मैं काम को करूं और फिनिश कर दूं। और आज बहुत मैं प्रेजेंट रहती हूं, बच्चों के साथ मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव है, मैं बहुत डीप लेवल पर कनेक्ट कर पाती हूं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोग मेरे सामने होते हैं, मैं उनके बारे में बताने लगती हूं, तो लोग कहते हैं आप मेरे बारे में कैसे जानते हो? क्योंकि मैं उनको सिर्फ बाहर से महसूस नहीं कर रही, वो उनके अंदर, क्योंकि जैसे लिसनिंग 3 तरीके की होती है। एक लिसनिंग होती है केवल जो आप वर्ड्स से, केवल वर्ड्स, मेयरली वर्ड्स को आप सुनते हैं। एक होती है जो उसके पीछे इंटेंशन होती है, और तीसरा ये होता है कि वो उस इंटेंशन के पीछे भी क्या इंटेंशन है, और जो आपको एक्शन करवा रहा है उस लेवल पर आती है लिसनिंग। और आज मैं उस चीज को महसूस कर पाती हूं कि जब आदमी, ये इंसान कहां से आ रहा है, उस वो चीज केवल मेडिटेशन की वजह से एनेबल हुई है मेरे अंदर। उसने मुझे इतना एम्पावर किया है कि मैं उस प्यार को महसूस कर पाती हूं और सब लोगों से कनेक्ट कर पाती हूं। और जैसे हर आदमी में सारी चीजें हैं अंदर, लेकिन जब आप अवेयर होते हो तो आप रियलाइज करते हो कि क्या है आपके अंदर। सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन आप रियलाइज कब करते हो? जब आप बहुत अवेयर हो जाते हो, बहुत काम हो जाते हो। तो वो चीज मेरे पास, बच्चे हमेशा एक्सप्रेस कर रहे थे लेकिन मेरे पास वो कान नहीं थे सुनने के लिए। मैं वो सुनना चाहती थी, वो सुन रही थी जो मैं सुनना चाहती थी, लेकिन आज मेरी लिसनिंग बहुत डिफरेंट हो गई है। और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं सब कुछ जानती हूं, वो पता नहीं कहीं डिसॉल्व हो गया है। मैं और ज्यादा ओपन हो गई हूं। हर अपॉर्चुनिटी मुझे लर्निंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। हर इंसान मुझे इतना ग्रेट, अमेजिंग नजर आता है कि मैं कहती हूं इस इंसान से मैं क्या सीखूं। वो एक फीलिंग आती है मेरे अंदर। तो डेफिनेटली ये मेडिटेशन से एनेबल हो पाया है, मेडिटेशन ने मुझे एम्पावर किया है। एनेबल से ऊपर वाली स्टेज एम्पावरिंग की होती है। एनेबल तो हम हमेशा ही करते हैं दूसरे आदमी को, कि जैसे आदमी कहता है मुझे दुख है तो हम कहते हैं हाँ हाँ आपको दुख है, उसको कहते हैं एनेबलिंग। एम्पावर आप तब करते हैं जब दूसरा आदमी उसको डील करने की उसके अंदर पावर आ जाए, उसको वो मैनेज कर सके, उसको एम्पावरिंग कहते हैं। तो वो मैंने अपने अंदर महसूस की है, और मैं ये बात पक्के से जानती थी कि अगर मैंने अपने अंदर कुछ चेंज नहीं किया, इतनी अवेयरनेस जरूर थी कि अगर मैंने कुछ नहीं बदला तो ऑलमोस्ट सर्टेन फ्यूचर है कि जिस तरीके से मैं आज जहां हूं और मैं कहां एंड अप होंगी, बच्चों को या तो डिसिप्लिन करने में या उनको डांटने में या मैं उनको दूसरी शोभा बनाने में, बस यही करूंगी मैं। मैं आर्यन को आर्यन नहीं बनने दूंगी और अदिति को अदिति नहीं बनने दूंगी अगर मैं प्रेजेंट नहीं रहूंगी। और वो चीज मैंने मेडिटेशन के थ्रू महसूस की है। नेक्स्ट कर दी। तो ये सारा जिस्ट है कि मुझे क्या मिला है। नेक्स्ट कर दीजिए। तो सर्टेनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग पतंजलि योग मेडिटेशन कैन हेल्प एनीबडी विद आर्य समाजी बैकग्राउंड टू बी ऑन द पैथ ऑफ परफेक्शन एज महर्षि दयानंद इंटेंडेड एंड येट रिमेनिंग हम्बल दैट वी आर नॉट परफेक्ट। इट एम्पावर्स अस टू कंप्लीट द ट्रिनिटी ऑफ नॉलेज एक्शन एंड उपासना, ज्ञान कर्म उपासना।